पिछले पाठ के आठवें नंबर की कारिका में कहा गया था कि प्रबादा बहुधा मताः। प्रबाद का मतलब सिद्धांत, बहुधा माने अनेकधा, मताः माने उक्ताः। तो अनेक प्रकार के सिद्धांत जो हैं, प्रबाद जो हैं, वो कहे गए हैं। और उस कहने के पीछे कारण उन्होंने बताया था कि तस्य अर्थवाद रूपाणी निश्चित्य स्वविकल्प जाह। वेद में जो है ना अर्थवाद वाक्य हैं, तो उस अर्थवाद के बारे में मैंने बताया हुआ है आपको। तो अर्थवाद वाक्य को अपने अपने हिसाब से, अपनी अपनी दृष्टि से उसकी व्याख्या करके, और विद्वानों ने एकत्ववाद, द्वैतवाद, इन सब वादों का जो है ना प्रतिपादन किया और अनेक प्रकार के सिद्धांतों को भी बताया। ये बात आई थी आठवीं कारिका में। आज नवीं कारिका से हम लोग पढ़ेंगे सत्या विशुद्धिस्तत्रोक्ता विद्यै वैक पदागमा युक्ता प्रणव रूपेण सर्ववादा विरोधिनी। इसमें ये जो पूर्व कारिका में कहा गया कि प्रवादा बहुधा मताः, कि वेद के आधार पर ही अनेक प्रकार के प्रवाद हुए, अनेक प्रकार के सिद्धांत हुए, तो उस पर जो है ना जिज्ञासा होती है कि जब सिद्धांत अनेक प्रकार के हैं तो फिर उन सिद्धांतों में सत्य क्या है और मिथ्या क्या है, इसका ज्ञान कैसे होगा, किसको सत्य माना जाए, किसको जो है ना मिथ्या माना जाए। तो इसी जिज्ञासा का समाधान इस कारिका में किया गया है। इसमें कहते हैं कि तत्र, तत्र का तात्पर्य है कि ये जो एकत्व माने एकत्वी और द्वैती का जो प्रबाद है, सिद्धांत है, उन सिद्धांतों में एक पदागमा, एक पदागमा का अर्थ होता है एक पद रूपा श्रुति ही। एक पदा माने जिसमें एक पद हो, और आगम का अर्थ होता है श्रुति माने वेद। तो ऐसा, ऐसी श्रुति, ऐसा वेद जो कि एक पद वाला हो, तो ऐसा कौन है? तो ऐसा, ऐसी श्रुति जो होती है ना वह प्रणव होता है, ओंकार जिसको कहते हैं या ओम जिसको कहते हैं ना, उस ओम को एक पदागमा कहा जाता है, एक पदागमा श्रुति कहा जाता है। तो तत्र माने उक्त प्रवादेशु, उक्त प्रवादों में एक पदागमा जो श्रुति है, अर्थात जो ओम है, वह विशुद्ध ही, वह जो है ना एकदम से विशुद्ध है। विशुद्ध है अर्थात सर्व कल्पना दोष रहिता, कल्पना के करने के कारण जो दोष हो जाते हैं उन दोषों से ये रहित है, क्योंकि ये एक पदा श्रुति में कोई कल्पना नहीं है, ये हकीकत है, ये सत्य है। हाँ, एकत्ववाद और द्वैतवाद, ये इन सब सिद्धांतों के प्रतिपादन के लिए जो कल्पना की गई है वो सब तो कल्पित है, लेकिन एक पद अपदा जो श्रुति है वह सत्य है, वह विशुद्ध है। विशुद्ध किसको कहते हैं? दोष रहित जो होता है उसे विशुद्ध कहते हैं। तो यह एक पदागमा जो श्रुति है ओम, वह क्या है? विशुद्धि है, अर्थात कल्पना दोष से रहित है। और क्या विशेषण बताया इसका? कि सर्ववादा विरोधिनी, यह जो श्रुति है ये सभी वादों का अविरोधी है। वाद का मतलब सिद्धांत होता है, सभी सिद्धांतों से इसका अविरोध है। अविरोध है मतलब विरोधाभाव है, विरोध नहीं है। ओंकार ही ऐसा तत्व है जिस तत्व से कोई भी सिद्धांत हो उस सिद्धांत का कोई विरोध नहीं है। इसीलिए एक पदागमा जो ये श्रुति है उसके विशेषण एक तो बताए गए विशुद्धि अर्थात दोष रहित है एक पदागमा श्रुति, और दूसरा विशेषण बताया गया सर्ववादा विरोधिनी कि सभी वादों से, सिद्धांतों से ये अविरोधिनी है, इसका किसी के साथ विरोध नहीं है। आगे कहते हैं कि युक्ता प्रणव रूपेण, प्रणव रूपेण युक्ता विद्या, ये जो है ये प्रणव रूप में प्रणव इसका स्वरूप है इस विद्या का, वही प्रणव मतलब ओंकार, वह जो विद्या है वह प्रणव रूप से युक्त है, अर्थात प्रणवात्मक है, प्रणव स्वरूपा है। और यह जो है यही सत्या, यही जो है एक पदागमा श्रुति वो सत्य है, और बाकी सब जो है इसी के आधार पर चूंकि बने हैं इसीलिए उसको भी प्रामाणिक मानना है, उसको मिथ्या नहीं मानना है। तो ये जो जिज्ञासा हुई थी पहले कि इन प्रवादों में किसको सत्य माना जाए, तो उसके लिए इन्होंने बताया कि एक पदागमा जो श्रुति है जो प्रणव रूप प्रणव स्वरूपा है, प्रणवात्मक है और जो सर्ववाद से अविरोधी है और विशुद्ध है, वही एक पदागमा जो है श्रुति वह सत्य है, ओंकार ही सत्य है। अब इसके बाद दसवीं कारिका में चलते हैं। विधातुस्तस्य लोकानाम अंगोपांग निबंधनाः विद्याभेदाः प्रतायन्ते ज्ञान संस्कार हेतवः। यहाँ इसका अन्वय होगा कि लोकानाम विधातु तस्य अंगोपांग निबंधनाः विद्याभेदाः ज्ञान संस्कार हेतवः प्रकायन्ते। इसमें जो लोकानाम है, विधातुस्तस्य लोकानाम, लोकानाम का अर्थ होगा सकल जगताम, माने सारे जगत का, संपूर्ण जगत का। विधातु, विधातु माने प्रकृते है, माने समग्र जगत की जो प्रकृति है, समग्र जगत का जो विधाता है, प्रकृति और विधाता पर्यायवाची शब्द है। और प्रकृति पद से यहाँ पर ना क्या लेना है, तो आपने शुरू में पढ़ा है ना कि विवर्त तीर्थ भावे न प्रक्रिया जगत हो जाता है, ये जगत जो है यह विवर्त रूप है और इसका जो उपादान कारण है, समवायी कारण है, वह क्या है, तो शब्द ब्रह्म है। तो यहाँ जो विधाता कहा गया है वो उसी प्रकृति के लिए कहा गया है, विवर्त के उपादान कारण शब्द ब्रह्म के लिए कहा गया है। तो लोकानाम अर्थात सकल जगताम, विधातु अर्थात प्रकृते है, प्रकृते है अर्थात विवर्तस्य उपादान कारणम शब्द ब्रह्म, उस शब्द ब्रह्म का अंगोपांग निबंधना। हाँ, उस सब, वह सब। अच्छा, एक चीज और जान लीजिए, जब कभी शब्द ब्रह्म की बात हो ना, तो शब्द ब्रह्म से वेद को लेना है। शब्द ब्रह्म किसको कहते हैं, तो वेद को कहते हैं, और वेद जो है वह तो चार हैं, बहुत बड़ा है, तो उसको अगर बहुत ही संक्षेप में कहना हो उसको प्रणव कहेंगे, ओंकार कहेंगे। तो शब्द ब्रह्म से थोड़ा सा व्यापक दृष्टि से लेंगे तो वेद लेना है, और सूक्ष्म दृष्टि से लेंगे तो शब्द ब्रह्म का मतलब हो जाएगा ओम, प्रणव। ठीक है, तो वह लोक लोक का, संपूर्ण जगत का जो विधाता है शब्द ब्रह्म वेद, उस वेद का जो अंग है और उस वेद का जो उपांग है। अब ये वेद का अंग क्या होता है और उपांग क्या होता है, ये मैं बाद में बताऊंगा, अभी पहले अंगोपांग निबंधना बता देता हूँ कि वेद, ये लोक का जो विधाता है वेद, उस वेद का अंग और उस वेद का जो उपांग है उसको निबंधन करके, निबंधन का अर्थ होता है निमित्त बना करके, उसको हेतु बना करके, माने वेद के अंग को और के आधार पर और वेद के उपांग के आधार पर विद्या भेदाः प्रतायन्ते। विद्या के जितने भी भेद हैं उन सारे भेदों का जो है ना विस्तार किया जाता है, सारी विद्याओं का जो है प्रतिपादन किया जाता है, सारी विद्याओं का वर्णन किया जाता है, और उन विद्याओं के वर्णन करने का आधार क्या है, उसका निबंधन क्या है, उसका निमित्त क्या है, कारण क्या है, तो कहते हैं कि अंगोपांग, वेद का जो अंग है और वेद का जो उपांग है उसी को निमित्त बना करके सारी विद्याओं का भेद जो है वह विस्तारित होता है, वह प्रतिपादित होता है। और वह जो विद्या का भेद है, अनेक प्रकार की जो विद्याएं हैं वो क्या है, तो ज्ञान संस्कार हेतव, वह ज्ञान का हेतु भी है और संस्कार का हेतु भी है, अर्थात अनेक प्रकार की जो विद्याएं हैं उन विद्याओं से ज्ञान भी मिलता है और संस्कार भी मिलता है। अब ज्ञान से क्या लेना है, तो ज्ञान से लेना है सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान मतलब हो गया शब्द ब्रह्म का ज्ञान, और संस्कार से क्या लेना है तो संस्कार से तीन चीजों का को पकड़ना है। एक तो पकड़ना है वाक मन वाणी को, दूसरा पकड़ना है किसको तो बुद्धि को, वाक बुद्धि इन दोनों को, और काय भी ले लीजिए शरीर भी ले लीजिए, तो शरीर वाक और बुद्धि इन तीनों का संस्कार भी जो है वो विद्या के भेदों से होता है। फिर से एक बार मैं पूरी कारिका का अर्थ बता देता हूँ, फिर मैं स्पेशल कुछ सब बातों को बताऊंगा यहाँ पर कि लोकानाम विधातु माने लोक का जो विधाता है प्रकृति है, लोक हो गया विवर्त, उसका जो विधाता है माने उपादान कारण जो है शब्द ब्रह्म अर्थात वेद, उस वेद के जो अंग हैं और उपांग हैं उन अंग और उपांगों को निमित्त बना करके विद्या के तमाम भेदों का जो है ना विस्तार किया गया है, और इन विद्या के भेदों से क्या होता है तो ज्ञान होता है और संस्कार होता है। ज्ञान मतलब सम्यक ज्ञान अर्थात शब्द ब्रह्म का ज्ञान, और संस्कार का मतलब हो गया काय वाक बुद्धि का संस्कार, तो शरीर का भी इससे संस्कार होता है, वाक माने वाणी का भी संस्कार होता है और बुद्धि का भी संस्कार होता है। अब इस कारिका में दो चीजें विशेष रूप से जानने वाली हैं, एक तो अंग और उपांग क्या है वेद का, और दूसरा विद्या के भेद कितने हैं और कौन कौन से हैं। तो आप जान लीजिए कि निरुक्त में, निरुक्त का आपने नाम सुना होगा, वेदांग जो छह प्रकार के होते हैं उसमें एक निरुक्त भी है, और निरुक्त में कहा गया कि मंत्र ब्राह्मणात्मको वेद, कि वेद किसको कहते हैं तो वेद जो है मंत्रात्मक होता है और ब्राह्मणात्मक होता है। तो वेद के दो भाग हैं, एक है मंत्र भाग और दूसरा है ब्राह्मण भाग, ये दोनों भाग जो है मंत्र भाग और ब्राह्मण भाग ये वेद के अंग हो गए। और वेद के उपांग कौन हैं तो स्मृतियां जो है ना, जैसे याज्ञवल्क्य स्मृति, मनुस्मृति, शंख स्मृति, इस तरह से बहुत सारी स्मृतियां हैं, तो ये स्मृतियां जो है ना इसके उपांग हैं। तो अब आप समझ में आया कि वेद का अंग क्या है, तो मंत्र भाग और ब्राह्मण भाग जो है वह वेद का अंग है, और इसका प्रमाण क्या है तो निरुक्तकार ने कहा है मंत्र ब्राह्मणात्मको वेदः, वेद जो होता है वह मंत्र ब्राह्मणात्मक होता है अर्थात मंत्रात्मक होता है और ब्राह्मणात्मक होता है। इसी का जो है ना अंतिम भाग जो है वह उपनिषद कहलाता है, है। और उपांग कौन है वेद का तो स्मृतयः उपांगानि, स्मृतियां जो हैं ये वेद के उपांग हैं। क्यों इनको उपांग कहा जाता है तो उप जोर अंग बराबर उपांग, तो उप मतलब होता है समीपवर्ती, तो समीप अंग के समीपवर्ती जो होता है उसी को कहते हैं उपांग। तो अंग है मंत्र भाग और ब्राह्मण भाग, और उसके समीपवर्ती जो है वह स्मृतियां होती हैं, इसीलिए स्मृतियों को उपांग कहा जाता है। क्लियर। अब जो है आपको समझना है कि विद्या के जो भेद हैं वे भेद कितने हैं और कौन से हैं, तो चतुर्दश विद्या, हाँ विद्या जो है ना 14 प्रकार की होती हैं, वो 14 प्रकार की कौन सी विद्याएं हैं, तो आप अगर कलम कापी रखे हैं तो नोट कर लीजिए, मैं धीरे से लिखा देता हूँ आपको। अंगानी वेदास चत्वारो, अंगानी वेदास चत्वारो, अंगानी वेदास चत्वारो, ठीक है लिख लिया आपने अंगानी वेदास चत्वारो। इसके बाद लिखिए मीमांसा न्याय विस्तर, मीमांसा न्याय विस्तर, मीमांसा न्याय विस्तर, मीमांसा न्याय विस्तर। फिर आगे लिखिए पुराणम धर्मशास्त्रम च, पुराणम धर्मशास्त्रम च, पुराणम धर्मशास्त्रम च। फिर आगे लिखिए विद्या येता चतुर्दश, येता में ही के आगे एतास है, यन कर देंगे तो येतास हो जाएगा, तो विद्या येतास चतुर्दश, विद्या येतास चतुर्दश। विद्या येतास चतुर्दश। एक बार फिर से मैं पूरा श्लोक बोलता हूँ। अंगानि वेदास चत्वारो मीमांसा न्याय विस्तरः पुराणं धर्मशास्त्रं च विद्या येतास चतुर्दश। अब ये 14 विद्याएं जो हैं वो कौन कौन सी हैं वो इसमें बताया गया कि अंगानि, कि अंग जो हैं वो इसमें विद्या में गिनती होती है। अंगों की अंग कितने हैं तो आप जानते हैं, अंग मतलब वेदांग। तो वेदांग जो है ना ये 6 प्रकार के हैं। तो अंगानि का मतलब हो गया 6 प्रकार की विद्या, और वेदाह चत्वारः और 4 तरह का जो वेद है वह, तो 6 प्रकार का वेदांग हो गया और 4 प्रकार का वेद हो गया, तो 6 और 4 10 हो गए। फिर मीमांसा, इसको जोड़ेंगे तो 11 हो गया। न्याय विस्तरः माने न्याय विद्या को ले लेंगे तो 12 हो जाएगा। पुराणम, पुराण को जोड़ देंगे तो 13 हो जाएगा। और धर्मशास्त्रम च, धर्मशास्त्र को जोड़ने से 14 हो जाएगा। इस तरह से 14 प्रकार की विद्याएं होती हैं। 14 प्रकार का विद्या का भेद है, वो कौन कौन है वो आपको इस श्लोक में बताया गया। और ये जो 6 प्रकार के जो वेदांग हैं ऐसे आप लोग जानते ही होंगे, फिर भी मैं एक बार जो है आपको बता देता हूँ कि छंदः शास्त्र एक हो गया वेदांग, दूसरा हो गया कल्प, तीसरा हो गया ज्योतिष, चौथा हो गया निरुक्त, पांचवा हो गया शिक्षा, और छठवा हो गया व्याकरण। फिर से एक बार बोल दूँ, छंदः शास्त्र, फिर कल्प, फिर ज्योतिष, फिर निरुक्त, फिर शिक्षा और व्याकरण। तो इस तरह से 6 वेदांग हैं, 4 वेद हैं, 6 4 10, मीमांसा न्याय पुराण और धर्मशास्त्र को जोड़ करके ये 14 विद्याएं होती हैं। और ये जो 14 विद्याएं हैं ये वेद के जो अंग और उपांग हैं उन्हीं को आश्रय लेकर के, उन्हीं के आधार पर ये विद्या के भेद बने बनाए गए हैं। तो आज का पाठ यहीं स्थगित करते हैं।